डिवोर्स की जानिब या आपका प्यारा बिना विल लिखे या विल लिखकर आपको छोड़ के जा चुका है। विल के मुतालिक कोई भी काम हो या आपको चाहिए ट्रस्टीशिप सर्टिफिकेट या आपकी रियल स्टेट क्लोजिंग नजदीक है और आप हैं एक तजर्बेकार लॉयर की तलाश में, इन तमाम कामों के लिए आपकी मदद के लिए एक बाएतमाद इदारा मलिक लॉ ऑफिस बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स मोहम्मद अतीक मलिक आपकी तमाम कानूनी मसाइल में आपकी रहनुमाई करेंगे। GTA में दो लोकेशंस, मिसिसागा 168 क्वीन स्ट्रीट साउथ यूनिट 201, इन स्कारब्रो 1825 मार्कम रोड यूनिट 205। कॉल टुडे मलिक लॉ ऑफिस 9052914559 9052914555।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر
6478724900।
اپنی کمیونٹی دا سب تو بڑا ودیا کوالٹی والا تے سب تو پرانا सोडी फर्नीचर हर घर की पहचान बन चुकी है।
वो फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गार्लिक कीजी, सारे घर का फर्नीचर बढ़िया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस से मिल जाता। सोडी फर्नीचर तो 3 साल ले नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773 ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक लियो थ्रू आउट ओंटारियो। नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक लियो 5196220660 quicktrucklube.com।
हमारा मंसूबा ऑन्टेरियो को कनेक्ट कर रहा है। हम रोजाना के सफर को कम करने के लिए नई सड़कों और हाईवेज की तामीर कर रहे हैं और बढ़ते हुए इलाकों को मुंसलिक करने के लिए अवामी ट्रांजिट को वसत दे रहे हैं ताकि आपका सफर तेज, महफूज और आसान हो। मजीद मालूमात ontario.ca/builds पर मौजूद हैं। इसकी अदायगी ऑन्टेरियो की हुकूमत की जानिब से की गई है।
आयशा, ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो?
घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों, एक ही जगह है फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान साजो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स 512 ब्रिस्टल रोड वेस्ट ऑफ मिसिसागा 9058487000। फातिमा ग्रोसर्स, सबसे जबरदस्त।
जी समय वेलकम बैक अगेन एंड 6:04 और 26 सेकंड हमारी घड़ियों में हो चुके हैं और ब्यूटीफुल गॉर्जियस 26 डिग्रीज टेम्परेचर। कुछ बिलीव दैट, दो हफ्ते पहले इधर ही बैठे थे हम, घर में सर्दी हो गई यार, ऐसी हो गई, या हो गया। मैं सब भी कहा था आपको स्टॉप कंप्लेनिंग आ रहा है और अब कह रहे हैं जी बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है यार, गाड़ी में बैठ के बड़ी गर्मी आती है। कभी भी खुश ना रहना है और हमारा भी काम यह है कि आपको खुश ना रखें, तो आपको हम अच्छी तरह ही टेम्परेचर बताते रहते हैं। अब देख लें शाजिया जी को जरा भी खुश नहीं है, हम कोशिश करते हैं हम क्या खुश ना रहे, बस एक एक महीने की छुट्टी करके आती हूँ, कहती मैं खुश नहीं हूँ। दिस पोर्शन ऑफ द न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय MWC मुस्लिम वेलफेयर कैनेडा। सब ईद उल अजहा की आमद आमद है और अगर आपने पाकिस्तान में या यहां पर कुर्बानी करनी हो तो सब आप इनकी खिदमत हासिल कर सकते, यहां की कुर्बानी नहीं करते यहां पर, वो यहां पर आपकी कुर्बानी का तीसरा हिस्सा जो है वो आप मेक श्योर के तीसरा हिस्सा जो है वो आप जरूर दें और मुस्लिम वेलफेयर कैनेडा को दें, क्योंकि इनके पास सैकड़ों और हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, आपकी तरफ से ये उनके लिए तोहफा होगा। अगर आपने पाकिस्तान में कुर्बानी करवानी हो तो पाकिस्तान में सब $105 का काउ का हिस्सा और $200 गोट का हिस्सा मुस्लिम वेलफेयर कैनेडा। आप इनकी वेबसाइट पर चले जाइए mwcanada.org पे जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा डॉक्टर नाजिया रहमान यहां पर होती हैं। फैमिली ब्रेसेस कॉस्मेटिक इम्प्लांट डेंटिस्ट्री क्लोज टू योर होम, दो लोकेशन, दोनों लोकेशन जो है आपके अल्लाह भला करें ब्रैम्पटन के इलाके में। न्यू एंड इमरजेंसी पेशेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। कॉम्प्रीहेंसिव डेंटल केयर मॉर्निंग इवनिंग वीकेंड्स एंड सेम डे इमरजेंसी अपॉइंटमेंट्स मिल सकते हैं आपको। डायरेक्ट बिलिंग टू इंश्योरेंस एंड ईजी पेमेंट ऑप्शन के पास है। डॉक्टर नाजिया रहमान 9058721100 इनका फोन नंबर है। और साहब ओपन माइक कैफे की बात करते चलूं, ओपन माइक कैफे आपको कहां मिलेगा, ये 1310 डंडास स्ट्रीट डंडास एंड डिक्सी के कॉर्नर पर आपको मिलेगा इन मिसेस सागा। ओपन माइक कैफे पाकिस्तान के लजीज खाने खाने हो तो आप ओपन माइक कैफे पे तशरीफ लाइए। 4165266800 इनका फोन नंबर है। ईस्ट एंड में रह रहे हो तो साहब आपको बटाला हलाल मीट पे चले जाइए। बटाला हलाल मीट पे हलाल गोश्त हलाल चिकन पाकिस्तान हिंदुस्तान की ग्रोसरी के लिए आप पहुंचिए बटाला सुपर मार्केट पर 200 मार्कम रोड मार्कम एंड एग्लिंडन के कॉर्नर पर आपको मिलेगा। 4162643111 इनका फोन नंबर है। तो चलिए साहब मिलवा देता हूं आपको, क्या करेंगे, कोई चॉइस है नहीं है तो चलो मिलवा देते हैं, फिर तो मिलवाना पड़ेगा। शाजिया मलिक जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसी हैं आप?
वालेकुम सलाम। ये जो अभी आपने वैसे कहा है ना, ये जब डॉक्टर नाजिया का कह रहे थे फैमिली ब्रेसेस, यानी क्या मतलब है, पूरी फैमिली को पकड़ के उसको ब्रेस लगा दी है ऐसा करके, फैमिली ब्रेसेस?
आप यू आर वेरी बैकवर्ड।
अच्छा अच्छा अच्छा,
बहुत पुराना तरीका है कि एक बच्चे को लेके आए उसके ब्रेसेस लगाए, हाँ। दूसरे को लेके आए,
अच्छा
तो सारा फैमिली के साथ हो जाता है, सब सारे बैठो जी इधर।
नहीं जैसे आपने बोला ना फैमिली ब्रेस, तो इसका मतलब है सारी फैमिली इकट्ठी करके उसको ब्रेस कर दिया ऐसे करके,
एम्ब्रेस कर दिया।
एम्ब्रेस नहीं हमने करना, बस ब्रेस लगा दिया उनको बेचारों को। एम्ब्रेसिंग तो भी आपकी चल रही थी लियाकत भाई के साथ।
हाँ जी
है जी, कि क्या चक्कर है, यानी कि ये इतना फैमिली ओरिएंटेड ये चैनल है उसमें आप जपियां और पपियां कर रहे हैं उनके साथ जो है लियाकत भाई के साथ, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन इन दिस?
खेलना खेलो नहीं खेलना नहीं खेलो,
बस ठीक है हम अपनी विकेट उठा के जा रहे हैं, हमको ये नजारे नहीं देख रहे हैं यहाँ पे।
क्या बात है,
क्या नजारे चल रहे हैं यहाँ पे, है जी
नजारे हैं नजारे
नजारे।
आप अपनी आंखें बंद कर दिया करें।
हाँ बिल्कुल, मैं आपको यही कहने
हम कहते हैं सारे हाँ। बच्चों को, बच्चे अपनी आंखें बंद करो।
हाँ आपको लगत सही कहा, जब भी गंदा सीन आएगा मैं आंखें बंद कर लूंगी।
हो गया
बिल्कुल
हो गया,
हाँ जी
डील
है, डील है,
लॉक कर दूं?
बिल्कुल लॉक करें।
वाह हो गया जी।
अच्छा अच्छा, तुम सुनाओ तड़ियां गिड़िया सूखे पत्ते थे पीले जे कैसे हैं वो?
यार छोड़ो कुछ न्यूज शूज भी दसो।
नहीं नहीं पहले तुम दसो, पहले न्यूज आप हमें दे फिर हम आगे चलेंगे।
अच्छे नहीं है इसलिए मैं उनका जिक्र नहीं करना चाह
रहा। हाय 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 हाय, आपके दिल के
काम जो है से आ रहे हैं।
हाँ जी हाँ जी, इसीलिए मैंने पूछा है। मैंने कल क्या कहा था, कल मैंने क्या कहा था, और आमिर ने आपको क्या कहा था कि इसने जिंक्स कर दी। ये जिंक्स नहीं होता, ये पीरी डिक्शन होती है सर।
पीरी
पीरी वाली डिक्शन। तो ये हमने बताई थी, तो उन्होंने हारना ही था। मैंने तो आपको पहले ही कहा था ये हारेंगे, तो आपने कहा नहीं नहीं बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में है और ये चल।
तो आज जीतेंगे?
नहीं मुझे नहीं लग रहा वैसे।
7 बजे है गेम का। अब मैं अभी आपको प्रेडिक्शन निकलवा दूंगा।
अच्छा,
आज जीतेंगे?
मुश्किल है वैसे।
आज जीत जाएंगे पास।
अच्छा चलो ठीक है, उसी का दिल से ले लीजिए।
अब देखते हैं कि पीर आप है या पीर मैं हूँ। मैं पीर हूँ तो आप मंगल है।
कोई गल नहीं, अभी आ रहे हैं, मंगल बन जाएंगे, कोई बात नहीं है, आ रहे हैं। अभी 2 जून से शुरू हो रहा है T20 वर्ल्ड कप, देखेंगे अब आपकी पीरी डिक्शन।
मैंने और आमिर ने एक और जीशान ने हम लोग ने एक चीज का तहिया कर लिया है कि आपसे उस टूर्नामेंट जब तक चल रहा होगा टूर्नामेंट की बात ही नहीं करेंगे।
आप बेशक ना करो, हम तो करते रहेंगे ना।
नहीं हम बताएंगे नहीं आपको किसका मैच हो रहा है।
अच्छा
है, क्या
अच्छा
है, नहीं है।
तो हम तो अन्य गुंगे बैरों की तरह बैठे रहेंगे ना, हम तो देखेंगे ही नहीं खुद।
हाँ ना।
अच्छा अच्छा, मैं पूरे लाइनअप कर रही हूँ एक्सपर्ट्स जो हर रोज इंशाल्लाह हमारे साथ आके स्पेशल क्रिकेट सेगमेंट करेंगे।
ठीक है, वो एक्सपर्ट को कर दे दो।
हाँ आप नहीं करो। अच्छा जी, अच्छा जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय हेवनली डेजर्ट्स। ये हेवनली डेजर्ट्स जो हैं, ये कहते हैं जी जबरदस्त किस्म के, वाकई हेवनली डेजर्ट्स हैं। आपको एक दफा इनको विजिट करना जरूरी है। ये 5840 मेविस रोड यूनिट नंबर 2 मिसिसागा के अंदर है, और वो कहते हैं कि यहां पे बहुत जबरदस्त किस्म के हाई क्वालिटी डेजर्ट्स हैं, और यहां पे आपको जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने डिफरेंट टाइप्स की ये चीजें ऑफर कर रहे हैं। दे आर ऑफरिंग समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट, जैसे कि मैंगो बबल क्रीम मिल्क शेक, पैशन फ्रूट मजीटो एंड पॉम ग्रेनेट मजीटो। तो ये सारे आप उधर जाएंगे तो आप इसका एंजॉय का मजा ले सकते हैं। तो यानी कि जाना शर्त है यहां पे। इसके अलावा जनाब पायल ज्वेलर्स, वो कहते हैं जी जिस तरह का आपके घर में इवेंट है, कोई शादी है, कोई एंगेजमेंट है, या कोई और भी इस तरह की कोई छोटे मोटे इवेंट्स है फैमिली के, तो पायल ज्वेलर्स के ऊपर आप जाएं। और दे आर लोकेटेड एट 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव यूनिट 42 ब्रैम्पटन के अंदर, और बड़ी आपको खूबसूरत यहां पे ज्वेलरी मिलेगी जो कि आपके जो ओकेजन्स हैं शादी के या दूसरे स्पेशल जो ओकेजन्स हैं उनको चमका देगी। ठीक है, और जनाब चांदनी बैंक्वेट हॉल, ये तो आपको पता ही है, बड़ा जबरदस्त किस्म का 32 रूम लग्जरी होटल है, और यहां पे जो इनके डाइनिंग हॉल्स हैं उसके अंदर आप बड़े जबरदस्त इवेंट्स अपने कर सकते हैं। 1400 लोग जो हैं उनकी फैसिलिटी है यहां पे, और मुझे और माजिद भाई को भी आप बुलाना चाहते हैं आप जरूर प्लीज बुला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इनका नंबर है 6479653822.5। चलो आमिर नू ना ले ही जाएंगे अपने। चलो हाँ, कोई नहीं, बैग में डाल के ले जाएंगे।
हाँ ले जाएंगे,
हाँ ले जाएंगे। ठीक है जी,
आपको पता भी नहीं लगेगा
किसी को, उसने वैसे भी जड़ा है चिड़ी जितना खाना, किसी को क्या पता चलेगा। कोई अद्धा बंदा आया भी थी। और जनाब ऑन्टेरियोस लार्जेस्ट हलाल पाकिस्तानी बफे विलेज टेस्ट, ये जो है अब माशाल्लाह फैसल चट्टा साहब के 2 रेस्टोरेंट्स हैं, तो आपको अगर जाना है ये 4141 डिक्सी रोड मिसिसागा वाले पे, तो वहां आप जा सकते हैं। और इनका नंबर है 9052323663, या कि अगर आप ओकविल में जाना चाहते हैं तो इनका एड्रेस है 2294 लेकशोर रोड वेस्ट, और इसका नंबर है 9052262294। तो ये है जनाब हमारे कुछ स्पॉन्सर। अच्छा जनाब, आज जो है आपको पता ही है कि कल हमने आपको और परसों से हम आपको ये डिटेल्स बता रहे हैं कि जो ICC यानी कि इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है वो कह रही है, उनके जो करीम खान साहब हैं प्रोसिक्यूटर, वो कह रहे हैं कि हमास और जो ये इनके इसराइल के लीडर्स हैं इनके लिए अरेस्ट वारंट जो है वो किया जाए क्योंकि इन्होंने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए हैं। तो बड़े दिनों से लोग पूछ रहे थे कि भाई साहब आप टूडो साहब, आप जंती टूडो साहब चुप क्यों बैठे हुए हो। आपको हमने कल बताया ही था कि टूडो साहब जो है पेंसिल्वेनिया गए हुए हैं, यानी कि वहां पे अमरीका में है, तो वहां पर आज इन्होंने पूछ ही लिया उन्होंने, तो टूडो साहब ने वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उन्होंने कहा जी कि इट इज वेरी वेरी ट्रबलिंग, ये जो इन्होंने अरेस्ट वारंट्स ICC ने इसराइल और हमास के लिए दिए हैं ये बड़े जो हैं वो ट्रबलिंग है। अच्छा ट्रबलिंग का इनसे पूछा गया कि आपका क्या मतलब है कि ये ट्रबलिंग है इनका प्रपोजल जो है, वो कहते हैं जी कि क्योंकि इक्विवेलेंसी जो है वो हम ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि इसराइल की जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हैं, जबकि जो हमास के जो लीडर्स हैं दे आर ब्लड थर्स्टी टेररिस्ट्स। ये इन्होंने कहा जी, उसके लिए वर्ड्स यूज किए। तो इसलिए हम इक्विवेलेंट जो है नहीं कर सकते, और ये इसीलिए इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख के इनके अरेस्ट वारंट्स जो है वो रख रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि ये हेल्पफुल होंगे, टूडे साहब का कहना था। इसके अलावा फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मेलानी जोली साहबा ने भी आज मीडिया से बात करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि कैनेडा जो है आईसीसी की इंडिपेंडेंस जो है उसको तो रिस्पेक्ट करता है, और गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा बड़े क्लोजली इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है, और हम चाहते हैं कि दोनों पार्टीज जो है इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करें। तो बड़ा ज्ञान दिया उन्होंने, है ना, देखो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करें। तो कौन नहीं कर रहा, बाजी को नजर नहीं आ रहा कि कौन इंटरनेशनल लॉ फॉलो नहीं कर रहा? आंखें कमजोर है, चश्मे दिए जाए,
दिमाग भी कमजोर है।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई आपके पास आजकल दिमाग का डॉक्टर नहीं है? सारे आपने ये पीले दंदों वाले डॉक्टर जो कोई दिमाग का, कोई दिल का कोई डॉक्टर नहीं है मजद भाई आजकल? आकर कोई दिमाग का डॉक्टर ढूंढो आप। हाँ। ये इस टाइप के लोग जो कहते हैं ना इंटरनेशनल लॉ फॉलो करें, उनको भेजना पड़ेगा उनके पास,
डेफिनेटली,
है ना?
डेफिनेटली।
अच्छा जी, तो ये जनाब आज बहुत बड़ा बयान जी हमारी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने दिया है, यानी इन लोगों का मुझे नहीं पता कॉन्शियस जिंदा भी है कि नहीं। हम अपने पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को कहते हैं कि जी इनका जमीर मर गया, इनका जमीर जिंदा है? ये जो बड़े ह्यूमन राइट्स के मतवाले बनते फिरते हैं, किधर की ह्यूमन राइट्स, और क्या मतलब है कोई सेंस है इस बयान के अंदर जो आज का ये बयान है, आप खुद सोचो। तो बारा जी बयान दिया जिन्होंने फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं कनाडा की, तो ऐसा है। अच्छा जनाब, जो सेनेट है कनाडा का उसने कुछ न्यू रूल्स आज अडॉप्ट किए हैं, और उसके लिए बड़ा हार्टबर्न हो गया है टोरीज को। अच्छा उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जी ये जो नए रूल्स लेकर आए हैं टोरीज का कहना यह है कि आप हमको बिल्कुल ही दीवार के साथ लगा रहे हो, क्योंकि हमारी अब बात जो है वो नहीं सुनी जाएगी, हम डिबेट नहीं कर सकेंगे, हम किसी भी चीज को जो है रद्द नहीं कर सकेंगे। लिबरल्स का क्या कहना है इसके ऊपर? लिबरल्स कहते हैं जी कि आपसे आपके कोई हकूक जो है छीन नहीं रहा है, आप ऑफिशियल ऑपोजिशन हो, आपके पास तमाम पॉलिटिकल टूल्स हैं कि आप अपनी बात को सामने रख सकते हो। अलबत्ता कोई अदर्स ग्रुप जो हैं, जो अदर्स ग्रुप जो है वहां पे, जो कि सेनेट के अंदर, हम चाहते हैं कि उनको भी एम्पावर किया जाए और उनकी बात भी सुनी जाए। टोरीज कहते हैं कि नहीं, आप हमारा जो फ्यूचर टोरी गवर्नमेंट्स हैं उनको क्रिपल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, ये इसमें इन्होंने कहा है कि सेनेट के अंदर ये मॉडर्नाइजेशन लेजिस्लेशन लाने की जरूरत है, जिसमें के जो एडिशनल ग्रुप्स हैं उनको पावर दी जाए कि वो भी डिबेट्स में हिस्सा ले सकें और अपनी बात रख सकें। इस वक्त जो है कनाडा की सेनेट में तीन ग्रुप्स हैं, और जो टोरीज हैं वो आउट नंबर करते हैं उनको, ये जो ग्रुप्स हैं मिलके ऑल टुगेदर, क्योंकि उनकी सीटें जो है कंजर्वेटिव पार्टी की अब 13 हैं, तो ये सारे जब मिल जाते हैं तो इनकी सीटें 13 से ज्यादा हो जाती हैं। इसमें जो आज सेनेटर्स ग्रुप एक है वहां पे, उन्होंने कहा जी कि ये बड़ा नेसेसरी था ये चेंजेस लेकर आना, ताकि हर किसी की बात जो है यहां पे रखी जा सके। इसी तरह जो प्रोग्रेसिव सेनेट ग्रुप है उन्होंने भी कहा जी कि ये जो है जो फ्यूचर कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स होंगी वो जो बार बार ये जो कोई रिफॉर्म्स हम लाने की बात करते हैं और उनको ये रिवर्स करने की कोशिश करते हैं उनको रोकेगा अब ये। तो यानी कि जो मुल्क के अच्छे के लिए जो रिफॉर्म्स लाई जाएंगी उनको जो ये बार बार रूल आउट कर देते थे, तो वो अब उसको इनको रोका जा सकेगा उससे। तो आज ये काफी गर्मा गर्म बहस जो है वहां पे कनाडा हमारे के सेनेट में ये चलती रही। इंटरपोल की बात मजे भाई आपने तो की है, और इसमें ये है कि वो कहते हैं जी इंटरपोल वाले कि हम 200 स्टोलन कनेडियन व्हीकल्स जो थे ग्लोबली सिंस फरवरी हम देख रहे थे कि वो कनाडा से लाई जा रही थी। अच्छा इसकी डिटेल्स जैसे कि आपने दी है कि 1500 व्हीकल्स थे, लेकिन उन्होंने कहा जी कि ये सारा कुछ हम आइडेंटिफाई इसलिए कर सके हैं कि आरसीएमपी ने इस साल के शुरू में हमको कांटेक्ट किया था और हमको कहा था कि भाई आप अपना डेटाबेस ऑफ स्टोलन जो व्हीकल्स हैं वो हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि आपको पता ही है कि इंटरपोल जो है 137 कंट्रीज का डाटा इनके पास एटलीस्ट है, हर तरह के क्राइम्स का, सिर्फ स्टोलन कार्स का नहीं, हर तरह के क्राइम्स का। लेकिन आरसीएमपी ने इनको स्पेसिफिकली स्टोलन व्हीकल्स के लिए बोला था, और उन्होंने कहा जी कि इंटरपोल ने आज के इस साल 2024 में कनाडा जो है इट इज अमंग वर्ल्ड्स टॉप 10 कंट्रीज, जहां के
कहीं तो टॉप 10 है।
हाँ हाँ कहीं तो टॉप 10 है, वाह जी वाह क्या बात है। उसमें स्टोलन गाड़ियां जो है वहां से आती हैं, ज्यादातर हाई एंड कार्स जो है, लग्जरी कार्स जो है, एसयूवीज हैं, क्रॉसओवर्स हैं, वो इधर से चोरी की जाती हैं और फिर उनको कुछ मिडिल ईस्टर्न और वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज को किया जाता है। लेकिन आज इंटरपोल ने कहा है कि यू हैव टू बी वेरी वेरी सावधान, यानी कि बहुत आपको एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि ये सारे का सारा पैसा ट्रांस नेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप्स जो है ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए और क्रिमिनल नेटवर्क्स को बढ़ाने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए आप
आरसीएमपी ने बहुत अच्छा कदम है आरसीएमपी का कि उन्होंने
इंटरपोल को इन्वॉल्व किया,
इन्वॉल्व किया है। उसकी वजह से जो ये गैंग्स जो है ना बड़े बड़े जो इनके अदाकार हैं उन लोगों को पकड़ सकते हैं।
जी बिल्कुल, हाँ जी। तो इन्होंने इंटरपोल ने भी कहा है कि भाई आप भी जरा ज्यादा एहतियात करें इस चीज को रोकने की, यानी कोशिश करें। और अभी हमने आपको पूरा लॉ बताया था जो कि लेकर आई है कनेडियन गवर्नमेंट ऑटो थेफ्ट के लिए, वो है। आज एक लेजर पोल हुआ है जी, और उसने एक सर्वे किया है तकरीबन 1519 कनेडियंस का, और ये इन्होंने किया था बिटवीन मे 17 एंड 19। उनके आज रिजल्ट्स जो है इन्होंने आज पब्लिश किए हैं। इसके अंदर वो कहते हैं जी 2/3 कनेडियंस जो है वो फील करते हैं कि जो इन्फ्लेशन है एट ग्रोसरी स्टोर्स इट इज गेटिंग वर्स। और इसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ये लॉबलॉ जो है खास तौर पे इसको हम जो है वो बॉयकॉट करेंगे। फूड इन्फ्लेशन जो है वैसे तो स्टडीली कूल डाउन कर रही है, लेकिन 30% जो लोग जिनको उन्होंने पोल किया दे स्टिल बिलीव के जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं अपने प्रॉफिट मार्जिन्स, जिसकी के वजह से बहुत ज्यादा प्राइसेस इनकी ग्रोसरी के ऊपर चली गई हैं। 26% ने कहा कि नहीं, इसके अंदर ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स भी शामिल हैं। 1 in 5 जो हैं उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को भी ब्लेम किया। इन्फ्लेशन ऑन ग्रोसरीज जो हैं वो 1.4% पे स्टैंड करती थी अप्रैल में, और उसकी वजह से जो है ये वैसे कहा जाता है, जैसे कि हमने आपको कल बताई थी स्टैट्स कनाडा की खबर के ओवरऑल इन्फ्लेशन उसकी वजह से लो हुई है 2.7%, बट स्टिल इट मींस दैट द ग्रोसरी प्राइसेस आर अप। और ये पिछले कई सालों से ऊपर ऊपर
तीन साल में शायद जी
21.4% ऊपर चली गई हैं ये प्राइसेस,
एंड दे आर कीप ऑन गोइंग अप।
जी बिल्कुल। तो मेजर ग्रोसरी स्टोर्स जो है वो कहते हैं जी हम अनड्यू वैसे प्रॉफिट्स नहीं कमा रहे, लोगों का ख्याल है कि ये कमा रहे हैं। लोगों से कहा गया कि आप जी अब बॉयकॉट करेंगे इसको लॉबलॉज को, क्योंकि बहुत ज्यादा आप लोग इससे खफा हुए हैं। तो तकरीबन जो है वैसे तो वो कहते हैं जी जब हमने पोल किया तो 7 of 10 जो थे वो तो इस बॉयकॉट के बारे में अवेयर ही नहीं थे, लेकिन 58% ने कहा हम बिल्कुल इसको जो है सपोर्ट करेंगे अगर बॉयकॉट किया जाएगा लॉबलॉज को। 18% ने कहा कि हम जो है या तो हम खुद या हमारी फैमिली का कोई एक पर्सन जो है इस बॉयकॉट को ज्वाइन करे। 2/3 ने कहा कि जी ये कोई भी इफेक्ट ज्यादा नहीं करेगी ये चीज जो बॉयकॉट आप कर रहे हैं ग्रोसरी प्राइसेस को नीचे लाने के लिए। 40% ने कहा कि हम बिग बॉक्स ग्रोसरी स्टोर्स लाइक कॉस्को एंड वॉलमार्ट यूज करेंगे। 31% ने कहा कि हम लोकल चेन्स जो हैं जैसे कि सोबीज एंड सेव ऑन फूड उनको यूज करेंगे। 23% ने कहा कि हम इंडिपेंडेंट लोकल ग्रोसरी स्टोर्स जो है उनसे अब सामान खरीदना शुरू करेंगे।
तो 2 out of 5 जो है उन्होंने कहा है कि हम लॉबलॉस को बॉयकॉट
करेंगे। हाँ जी बिल्कुल ठीक है।
बट नॉर्मली इट डजंट हैपन लाइक फॉरन उसका इफेक्ट नहीं आएगा, इट टेक्स अ लिटिल टाइम,
6-8 महीने में नजर आना शुरू होगा
इफेक्ट नजर आएगा।
जी जी बिल्कुल ठीक है। रॉयटर्स की ये खबर है जी, और ये खबर जो है वही जैसे हमने आपको कल बताया था कि जी जनाब अब यूरोप के अंदर क्रैक्स नजर आ रहे हैं, काफी क्रैक्स नजर आ रहे हैं। रॉयटर्स की आज की ये जो खबर है ये आज बताती है कि जो इजरायली फॉरन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री जो है उसने आज अनाउंस किया है कि वो अपने एम्बेसडर्स जो है आयरलैंड और नॉर्वे से इमीडिएटली वापस बुला रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि नॉर्वे स्पेन एंड आयरलैंड जो हैं उन्होंने हालांकि ये लोग जो हैं एलाइज हैं बड़े क्लोज इनके इसराइल के भी और जाके जाहिर है कि यूरोपियन यूनियन में बैठे हैं, इन्होंने कहा था कि जी हम एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट को रेकग्नाइज करेंगे। जबकि आपको पता है कि यूके और यूएस और बाकी इस तरह के जो कंट्रीज हैं उन्होंने कहा जी कि नहीं इसके ऊपर बातचीत करने की जरूरत है अभी ऐसे यूनिलैटरली नहीं कर सकते।
कनाडा भी इसका कोई हालांकि टू स्टेट का इनके पास पॉलिसी है हमेशा से, मगर उसको रेकग्नाइज करने के लिए अभी तक इनके पास कोई सॉलिड वो नहीं है।
तो आयरलैंड और नॉर्वे जो है उससे आज बड़े नाराज हैं इसराइल, उन्होंने अपने एम्बेसडर्स को यहां से बुला लिया है। उन्होंने कहा जी कि आपने हमारी सारी की सारी एफर्ट जो हम कर रहे थे फॉर सेल्फ डिफेंस एंड 128 हॉस्टेजेस जो हम लेना चाहते थे वापस हमास से, तो वो आपने उसके ऊपर पानी फेर दिया है, लेकिन हम खामोश नहीं बैठेंगे जब तक कि हम अपना गोल अचीव नहीं कर देंगे, यानी कि तमाम के तमाम पैलेस्टीनियंस को जब तक हम मार नहीं देंगे। है जी, ये इनका गोल है। तो बहरहाल जी आज सऊदी अरेबिया ने बड़ी इनकी तारीफ की है, एज इफ इन कंट्रीज को बड़ी सऊदी अरेबिया की तारीफ की जरूरत है, लेकिन बहरहाल जी उन्होंने बड़ी तारीफ की आयरलैंड नॉर्वे और स्पेन की। उन्होंने कहा जी आप जो रिकग्नाइज करना चाहते हैं पैलेस्टीनियन स्टेट दिस इज वेरी गुड। व्हाइट हाउस ने इसके ऊपर एक आज स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा जी कि बाइडन गवर्नमेंट जो है वो वैसे तो टू स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करती है, लेकिन जो बाइडन साहब खुद अपना सारा करियर जो है वो करते रहे हैं इनको सपोर्ट, लेकिन वो बिलीव करते हैं कि पैलेस्टीनियन स्टेट जो है निगोसिएशंस के थ्रू जो है वो सेटअप करने की जरूरत है बिटवीन द टू पार्टीज, यानी कि ज़ायरा इसराइल एंड पैलेस्टाइन, और ये यूनिलैटरल रिकग्निशन नहीं हो सकती है। तो यानी मुझे आज बड़ी हैरत हुई बाइडन साहब के ऊपर भी कि पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकग्नाइज निगोसिएशन से करना, यानी कि क्या मतलब है आपका बाइडन साहब? आपको हिस्ट्री पता है, इसराइल जो है ऑक्यूपायर है, तो इसराइली स्टेट को रिकग्नाइज करने के लिए ये रेजोल्यूशन होनी चाहिए कि भाई क्या पैलेस्टाइन के अंदर एक इसराइली स्टेट भी हो सकती है और क्या उसको रिकग्नाइज भी किया जा सकता है कि नहीं। पैलेस्टाइन तो हमेशा से था, ये तो मुल्क ही सारा पैलेस्टाइन था, ये उनका मुल्क था जिसके ऊपर कब्जा किया हुआ इसराइल ने। बहरहाल जी, ये इनको भी जो है ना जरा बादाम खाने की जरूरत है मजद भाई, और इनको जरा हिस्ट्री का एक लेसन भी देने की जरूरत है। बहरहाल जी, बाइडन साहब ने कहा है कि इसराइल की स्टेट का जो रिकग्निशन है वो दोनों पार्टीज के, पता नहीं अब किस तरह की भाई आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई है। आज जो एक्स के ऊपर अगर आप ट्रेंड देख रहे होंगे तो ये बहुत बहुत बड़ी न्यूज है, एंड जिस तरह से यूरोप के अंदर क्रैक्स आ रहे हैं ना, अमेरिका के अंदर भी अब आपको क्रैक्स नजर आने शुरू होंगे। एक पूरी की पूरी आज एक रिपोर्ट आई है, हालांकि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन तो मानने को तैयार नहीं है कि अमेरिका के अंदर रिसेशन है। अमेरिका के अंदर एक्सपर्ट्स का कहना है, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, कि रिसेशन एक्चुअली हैज सेट इन यूएस। आज एक और बहुत बड़ा धचका जो है जो अमरीका को लगा है वो ये है कि ब्रिक्स के दो सबसे बड़े कंट्रीज जो हैं इंडिया और रशिया, उन्होंने आपस में लोकल करेंसी के अंदर जो कुछ अरसे से ट्रेड शुरू की है, दैट ट्रेड टुडे हैज टच्ड 50 बिलियन US डॉलर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। उसकी वजह से अमेरिकन डॉलर हैज रिसीव्ड अ मेजर ब्लो जो है अमेरिकन डॉलर को आज मिला है। इन्होंने कुछ अरसा पहले ब्रिक्स जब उन्होंने कायम की थी तो इन्होंने कहा था जी कि हम अपनी लोकल करेंसीज में काम करना चाहते हैं, तो रशिया और इंडिया के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड थी वो जब इन्होंने बढ़ानी शुरू की, तो अभी जो फर्स्ट क्वार्टर गुजरा है 2024 का, उसमें इसने टच की थी 17.5 बिलियन यूएस डॉलर्स को, और ये जो थी ये दिस हैज रिजन बाय 5%, और इसने मेजरली अफेक्ट किया था यूएस डॉलर को। रशिया की जो एक्सपोर्ट्स थी वो दैट स्टूड एट 16 बिलियन यूएस डॉलर्स वर्थ ऑफ गुड्स, और इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स थी रशिया को वो 1 बिलियन डॉलर्स की थी, जो कि 22% इंक्रीज है फ्रॉम लास्ट ईयर। ऑल टुगेदर 50 बिलियन को सरपास कर रही है ये यूएस डॉलर्स को ये ट्रेड, और उसकी वजह से जो है काफी डावाडोल है आज यूएस डॉलर, और कहते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि अब चाइना जो है, चाइना भी कह रहा है कि हमारे साथ जो है वो चाइनीज जो करेंसी है उसके अंदर आप डील करें। तो अगर ये सारे कंट्रीज जो हैं ये अपनी करेंसीज में डील करना शुरू कर दिए, क्योंकि आज तक तो उन्होंने मतलब अंकल सैम ने तमाशा मचाया हुआ था ना कि दुनिया की सारी ट्रेड यूएस डॉलर्स में होगी, अब ये कंट्रीज कह रहे हैं खली वली। आपको पता ही है कि इससे पहले ईरान जो है और इंडिया, उन्होंने भी डिसाइड किया था कि वो इंडियन रुपीज में खरीदेंगे ईरान का ऑयल, और उन्होंने कहा था कोई हम यूएस डॉलर्स में नहीं, और ईरान जो था वो बिल्कुल उसने एग्री किया था, तो उसने कहा था हाँ जी बिल्कुल ठीक है, हम आपके इंडियन रुपीज में आप हमसे खरीद सकते हैं ऑयल। तो अगर इंडिया, रशिया, चाइना, जो कि इस वक्त ह्यूज इकोनॉमीज हैं, और उसके साथ ईरान भी मिल जाएगा, ये अपनी करेंसीज में अगर इन्होंने ट्रेड शुरू कर दी तो यूएस डॉलर को और धचके मिलते रहेंगे।
देन देयर इज अफ्रीकन एंड मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज।
जी जी जी, मिडिल ईस्ट से भी आज एक बहुत बड़ी खबर है, वो भी मैं आज आपको सुनाएंगे। आज यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब जो हैं वो आज हाजिर हुए थे जनाब सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के सामने, और यहां पे जब वो बात करने के लिए आए तो यहां पे बहुत सारे प्रोटेस्टर्स जो थे यहां पे खड़े हुए थे, जिन्होंने अपने हाथों पे लाल रंग का, खून का जैसे रंग होता है वो लगाया हुआ था, बहुत सारे प्लैकार्ड्स उठाए हुए थे। जब ये एंटर हुए तो इनको क्रिमिनल उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा जी कि इसको अरेस्ट करें ब्लिंकन साहब को फॉर वॉर क्राइम्स, और उन्होंने बहुत सारा शाउट किया कि ये वॉर क्रिमिनल है और ये रिस्पॉन्सिबल है पैलेस्टीनियंस के जीनोसाइड के लिए। कुछ लोगों ने तो इतना शोर मचाया कि फिर सिक्योरिटी के जो बंदे थे उन्होंने उनको उस हॉल से बाहर निकाला। इससे पहले भी आपको पता ही है कि अक्टूबर 31 को भी ब्लिंकन साहब और जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं इनके लॉयड ऑस्टन, वो जब टेस्टिफाई करने के लिए आए थे सेनेट कमेटी के सामने, तो उस वक्त भी ये यूक्रेन और इसराइल के ऊपर जब बात करने के लिए, तो उस वक्त भी काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, तो काफी दफा इंटरप्ट हुई थी। आज भी जिस वक्त ये हियरिंग इनकी चल रही थी तो سکس ٹائمز ہالٹ کی گئی یہ ہیئرنگز، اتنا زیادہ وہاں پہ جو تھا وہ شور مچ گیا تھا. آپ کو پتا ہی ہے کہ جو غزہ کے اوپر پروٹیسٹ ہیں یو ایس اے کے اندر کافی انٹینسیفائی کر گئے ہیں، کافی میجر جو ہیں بڑے بڑے یہاں پہ اور بڑی ان کی یونیورسٹیز میں بھی اور جگہوں پہ بھی یہ اب جو ہے پروٹیسٹ چل رہے ہیں. تو آج بھی جو ہے یہ چھ بار ان کی ہیئرنگ کو روکا گیا. ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ جناب انٹرویو دیا ہے ہمارے ٹرمپ صاحب نے ٹائم میگزین کو، ٹائم میگزین کو زبردست قسم کا انہوں نے انٹرویو دیا اور اس کا ہیڈنگ ہی انہوں نے لگائی ہے ٹائم میگزین نے، اف ہی ونز. اف ہی ونز جو ہے وہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ٹائم میگزین کے کور کے اوپر. اور اس میں انہوں نے جو ہے ٹرمپ صاحب نے بے تحاشا نتن یاہو جو ہے اس کو کریٹیسائز کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اکتوبر 7 کا جو اٹیک تھا اٹ ہیپنڈ آن نتن یاہوز واچ، اور وہ کہتے ہیں جی اس کو سارا کچھ پتا تھا پھر بھی انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. آپ کو بتائیے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے نتن یاہو صاحب کو پیار سے جو ہے بی بی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بی بی زرداری تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، برل ٹرمپ صاحب بی بی کہتے ہیں نتن یاہو کو. تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ میرا تو بی بی کے ساتھ بڑا ہی بیڈ ایکسپیرینس تھا اور آج انہوں نے بہت سارے بینز سپل کیے ہیں. آپ پڑھیں ذرا یہ ٹائم کا، جو ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ہم آپ کو پورا انٹرویو سناتے، لیکن انہوں نے آج بہت بڑی ریولیشن کی ہے ٹرمپ صاحب نے. ٹرمپ صاحب نے کہا جی کہ 2020 میں جب ایرانین قدس فورس کے کمانڈر قاسم سلیمانی کو ہم نے پلان بنایا تھا کہ ایک جوائنٹ یو ایس اسرائیل آپریشن میں اس کو ماریں گے، تو اسرائیل جو ہے اور بی بی جو ہے یہ بیک آؤٹ کر گئے تھے اس آپریشن سے 2 دن پہلے، اور یو ایس فورسز کو پھر عراق کے اندر یہ اکیلا آپریشن کرنا پڑا. یعنی کہ آج امریکہ نے کنفیس کیا ہے کہ امریکہ قاسم سلیمانی کی ڈیتھ کے اندر ڈائریکٹلی انوالو تھا، جو ایران کہتا تھا اور یو ایس ایڈمنسٹریشن اس کو ڈینائی کر دی تھی. تو آج انہوں نے کنفیس کر لیا. تو یہ بہت بڑی ورلڈ نیوز ہے، بہت بڑی اگر آپ اس کو واقعی اس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ اگر میں آفس میں ہوتا تو یہ بالکل اس طرح کی جو ہے یہ وار نہ ہوتی، اور کانسٹنٹلی میں جو ہے یہ کریٹیسائز کر رہا ہوں جس طرح سے یہ وار چلائی جا رہی ہے. میں نے تو اس کو بہت دفعہ بی بی کو کہا کہ یہ وار جو ہے اس کو اینڈ کریں، اور جو ہے انہوں نے جو اسرائیل کی پبلک ڈیموکریسی ڈپلومیسی ایفرٹس جو ہیں ان کو بھی آج بے تحاشا کریٹیسائز کیا. انہوں نے کہا کہ بے انتہا بری ڈپلومیسی ہے اسرائیل کی، بالکل یہ صحیح نہیں. اور وہ کہتے ہیں جی کہ اگر دوسری دفعہ میں الیکٹ ہو کے آیا تو اگر ایران کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئے گی تو میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہوں گا، لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ایک 2-state solution جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا جیسے کہ میں پہلے کہتا تھا. اس سے پوچھا گیا کہ آپ پہلے تو کہتے تھے، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت ہی ٹف ہوئے گا، کوئی 2-state solution نہیں ہے. اب یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ 2-state solution نہیں ہے تو پھر اب آپ کیا solution کہنا چاہ رہے ہیں، کہ یا یہ پورا پیلسٹائن ہے یا اسرائیل ہے. ظاہر ہے کہ آپ پیلسٹائن کو تو نہیں کریں گے، وچ مینس کہ اب آپ بھی یہ پالیسی بنانا چاہتے ہیں کہ صرف ایک اسرائیل ہوئے اور پیلسٹائن پیلسٹینینز اگر ہیں بھی تو ان کے انڈر ہوئے. تو یہ بہت خطرناک، یہ بھی ان کا پوائنٹ تھا. پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے ان کی جو انٹیلیجنس اور آپریشنل فیلئرز جو ہیں اکتوبر 7 کے اٹیک میں دیکھے گئے، اور میں بڑا ہرٹ میں نے فیل کیا جب یہ اٹیکس ہوئے. اور وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ یہ تھاؤزنڈ آف لوگ جو تھے اسرائیل میں ان کو اس کے بارے میں پتا تھا، لیکن پھر بھی بی بی جو ہے اس نے ہی لیٹ دس سلپ بائے، اور میں اگر آیا تو میں یہ وار کو روکوں گا جیسے اس نے کہا. انہوں نے کہا کہ جس طرح میں نے پہلے کیا تھا کہ میں عرب ورلڈ کے اندر دوستیاں بنا رہا تھا، ابراہم اکارڈز کے اندر سب کو دوست بنا رہا تھا، اب بھی اگر میں آؤں گا تو ابراہم اکارڈز کو آگے لے کے چلوں گا. ہاں البتہ یہ تمام عرب کنٹریز جن کی میں دوستیاں اسرائیل کے ساتھ کراؤں گا، لیکن ایران کی دوستی بالکل نہیں کراؤں گا، مائنس ایران جو ہے وہ میں رکھوں گا. تو آج یہ کافی میجر ان کا انٹرویو ہے جی جو آیا ہے. ایسوسیٹڈ پریس کی یہ نیوز ہے جی، اور ہم ہر وقت جیسے انڈیا پاکستان کو کوستے رہتے ہیں کہ وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ سارے یہ جو ہے کام چل رہے ہیں. جرمنی کے اندر آج بہت بڑی ایک رپورٹ آئی ہے اکارڈنگ ٹو ایسوسیٹڈ پریس کے بے تحاشا یہاں پہ جو ہے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کرائمز جو ہیں ہونے لگے ہیں، اور یہ ٹریکنگ کی گئی ہے پچھلے 20 سال کی، جس میں کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ بہت بڑا تھریٹ جو ہے فار رائٹ جو سے لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ آ رہا ہے. جرمنی نے وہ کہتے ہیں جی رجسٹر کیے ہیں 60,000 سے زیادہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کرائمز ان 2023. اس میں رائٹ ونگ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کرائمز جو ہیں وہ 23% رائز کیے ہیں 28,945 کیسز، اور इसमें से 1,270 जो थे बड़े वायलेंट केसेस थे. लेफ्ट विंग क्राइम्स जो हैं वो इंक्रीज किए हैं 11% टू 7,777 ऑफ विच 916 बट वायलेंट. अर्लियर दिस मंथ उन्होंने कहा जी के जो एक कैंडिडेट थे चांसलर शोल्स के सेंट्रल लेफ्ट सोशलिस्ट डेमोक्रेट पार्टी से उनको बहुत मारा पीटा गया था और सीरियसली उनको इंजर किया गया था जब वो कैंपेन कर रहे थे एक यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट सीट के लिए जो हमने आपको डिटेल्स बताई थी कुछ दिन पहले. चार लोग जो हैं इस सिलसिले में उनको जो जर्मन पुलिस ने अरेस्ट किया था उसके बारे में उन्होंने कहा जी कि ये इनके जो हैं ये राइट विंग बिलीव्स हैं. कुछ दिन पहले इससे पहले एक 74 इयर्स का आदमी जो कि जिसके बारे में कहा जा रहा था कि मेंटली सिक है उसने भी एक बर्लिन के टॉप इकोनॉमिक ऑफिशियल के ऊपर अटैक किया था और उसको जो है माइनरली इंजर किया था. अभी लास्ट वीक ही स्लोवेकिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी बहुत सारी गोलियां मारी गई थी और एक असैसिनेशन अटेम्प्ट था तो अब लेकिन भारत कहा जा रहा है कि अभी वो स्टेबल हैं. तो जर्मनी के अंदर वो कहते हैं जी इसके अलावा एंटी सेमेटिक क्राइम्स जो है वो भी लास्ट ईयर से डबल हो गए हैं टू 5,164 तो काफी जो हैं ये क्राइम्स चल रहे हैं. अच्छा जनाब आपने कहीं पे सुना है कि कहीं पे किसी मुल्क में एक ही वक्त में एक दो तीन दिन के अंदर कोई सैकड़ों ही की तादाद में अर्थक्वेक आए. अर्थक्वेक तो एक ही आता है ना जलजला जो होता है एक ही आता है या ट्रेमर्स उसके फील किए जाते हैं. अच्छा इटली का जो नेपल्स का एरिया है वहां पे 150 अर्थक्वेक्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं और लेकिन इनकी जो थी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं थी 4.4 वाला जो था वो सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट था लेकिन फिर भी इस रीजन के अंदर 40 इयर्स में इतने जो हैं ना तो इस मैग्नीट्यूड के और ना ही इतने जो हैं अर्थक्वेक्स आए हैं. हालांकि यहां पे कोई सिग्निफिकेंट डैमेज तो नहीं आया जो स्ट्रक्चर्स को या कोई जख्मी होने की भी लोगों की या मरने की कुछ खबरें नहीं आई हैं लेकिन विमेन्स प्रिजन जो है फजूली का उसको पूरे को इवैक्यूएट कराना पड़ा और फिर सिस्मिक एक्टिविटी जो थी वो देखी गई थी कैंपी फ्लैगरी के एरिया में. वहां पे 360,000 जो लोग हैं उनको कहा गया था कि ये मोस्ट एट रिस्क हैं इनको यहां से खाली कराने की जरूरत है. गवर्नमेंट ने इस वक्त एक मैस इवैक्यूएशन प्लान बनाया हुआ है और वो कहते हैं जी कि ये कैंपी फ्लैगरी का जो एरिया है यहां पे एक लार्ज वॉल्केनो है और लार्जर देन वेसुविस जिसने के डिस्ट्रॉय किया था रोमन सिटी ऑफ पैम्पॉय को एडी 79 के अंदर. तो वो कहते हैं जी कि ये जो सुपर वॉल्केनो है ये बिल्कुल रेस्टलेस था फॉर द लास्ट 70 इयर्स लेकिन अब जो है कुछ लग रहा है कि एक्टिविटी जमीन के नीचे इटली में बढ़ती चली जा रही है. आज एक और जो मेजर न्यूज है बहुत ज्यादा ये भी अच्छी भी बात है और ये शायद कुछ डराएगी भी लोगों को कि जो 6 गल्फ स्टेट हैं अरब स्टेट्स जो हैं उन्होंने कहा है कि हम शेंजन लाइक यूनिफाइड ग्रैंड वीजा जो है वो अब देंगे. तो ये जो 6 स्टेट्स हैं ये हैं सऊदी अरेबिया कुवैत कतर यूएई ओमान और बहरेन. इन्होंने कहा जी कि एक ही दफा ये वीजा लेना पड़ेगा और 30 डेज के लिए ये वैलिड होएगा और आप इन तमाम स्टेट्स के अंदर जो है घूम फिर सकेंगे. इसलिए जब एक दफा आपने ये वीजा आप ले लेंगे ग्रैंड वीजा शेंजन स्टाइल का तो फिर उस वक्त आपको हर कंट्री में जाके अलग-अलग से वीजे नहीं लेने पड़ेंगे. तो ये 6 स्टेट्स जो हैं ये कहती हैं कि जी हम टूरिज्म बढ़ाना चाहते हैं और हम ऑयल सेक्टर से हट के नॉन ऑयल सेक्टर्स को भी बढ़ावा देना चाहते हैं तो उसके लिए आज इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है. तो यानी दुनिया जो है वो अब जरा अमरीका के इन्फ्लुएंस से दूर दूर जाने की कोशिश कर रही है. और जनाब दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय मलिक लॉ ऑफिस. कोई भी आपकी जो लीगल मुसीबतें हैं तो आप मोहम्मद अतीक मलिक साहब से बात कर सकते हैं. इनका नंबर है 9052914455. और जनाब ये अल ईमान जो ग्रोसर्स हैं इनके ऊपर जरूर जाएं इनके ऊपर अभी भी बहुत अच्छी डील्स लगी हुई हैं तो आपको कोई भी चीज खासतौर पे भी जो वीकेंड आ रहा है जरूर उस पे जाएं और आप चीजें लें. दे आर लोकेटेड एट 2560 शेपर्ड एवेन्यू मिसिसागा में और कंपेयर जरूर कर लें जो है अपनी प्राइसेस तो आपको जरा बेटर आइडिया होगा. और जनाब राजा ते भाषा जी ऑल स्टेट एजेंसी में होते हैं और जाहिर है आपको जो है ये इंश्योरेंस देते हैं बड़ी जबरदस्त आपके बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं. तो अगर आपको इनसे और ज्यादा जो है वो चाहिए इन्फॉर्मेशन तो आप इनको कॉल कर लें 6472903773 के ऊपर ये होते हैं हमारे राजा ते भाषा जी. पाकिस्तान मिलिट्री जो है उसने आज इंटरिम अफगान गवर्नमेंट को एक दफा से फिर से कहा है कि आपको इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट करने की पड़ेगी क्योंकि आपकी सॉयल जो है टेररिज्म के लिए पाकिस्तान के ऊपर खर्च हो रही है और इसी तरह जो है बहुत सारे जो टेररिस्ट हैं वो क्रॉस बॉर्डर करके यहां पे पाकिस्तान में आ रहे हैं। आईएसपीआर की आज जो एक स्टेटमेंट आई है उसके मुताबिक ये जो टेररिस्ट हैं ये कॉन्स्टेंटली यहां पे पाक अफगान बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट करते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज को टारगेट करते हैं और इसके साथ साथ इनोसेंट सिविलियंस जो हैं वो उनको भी मारते हैं। जो आईएसपीआर की ये जो प्रेस रिलीज थी उसने ये भी कहा कि मिलिट्री का जो काउंटर टेरर ऑपरेशन है वो जारी है और खासतौर पर ये जो अभी रिसेंटली किया गया था संबाजा के एरिए में बलूचिस्तान के जोब डिस्ट्रिक्ट में उसमें 29 टेररिस्ट जो हैं उनको न्यूट्रलाइज किया गया था। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हमने कई दफा अफगान गवर्नमेंट को कहा है कि अपनी सॉयल को इसके लिए टेररिज्म के लिए अगेंस्ट पाकिस्तान ना यूज होने दें लेकिन वो उन्होंने अभी तक भी कुछ नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा टेररिस्ट अटैक्स आने शुरू हो गए जब से ये करंट अफगान रिजीम जो है ये पावर में आई है। लास्ट मंथ पाकिस्तान फोर्सेज ने जो है एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया था इनसाइड अफगानिस्तान टेरिटरी अगेंस्ट टीटीपी टेररिस्ट जो कि कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान पे जो है वो हमले कर रहे थे। तो आज फिर से उन्होंने इनको कहा है कि भई आप रोकें इनको। फेडरल गवर्नमेंट जो है उसने पाकिस्तान के अंदर एक इन्वेस्टिगेटिव कमेटी बनाई है जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी कि पीटीआई के जो लीडर रऊफ हसन साहब के ऊपर जो अटैक किया गया है उस सिलसिले में लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तारर साहब जो है उन्होंने इसकी कॉन्फर्मेशन देते हुए कहा कि जी पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी अब की जाएगी इस सिलसिले में पूरी। आज ये सेनेट के सामने बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि ये अटैक बहुत ही रिग्रेटेबल है और ये होना नहीं चाहिए था। इसमें उन्होंने कहा जी कि इस्लामाबाद के आईजीपी जो हैं सैयद अली नासिर रिजवी उन्होंने पुलिस से मांगी है एक रिपोर्ट इमीडिएटली और उन्होंने कहा जी के जो ये सेम लोग थे इन्होंने 7 दिन पहले भी रऊफ साहब को कुछ डराने धमकाने की कोशिश की थी लेकिन रऊफ साहब ने उसको सीरियस नहीं लिया था और उसको मेंशन नहीं किया था। अब ये जो सारे इमेजेस जो इंसिडेंट के सामने आए हैं उन सबको फोरेंसिक लैब में भेजा गया है। अलबत्ता जो आज एफआईआर लिखाई गई है इस्लामाबाद पुलिस ने लिखी है उस पर रऊफ हसन साहब ने बड़े एतराज किए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की एट पार्टी सेक्रेटेरिएट इन इस्लामाबाद और इनके साथ थे पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान और सीनियर लीडर आजम सवाती। तो उन्होंने कहा जी कि हसन साहब ने कि वो तो मेरा गला काटना चाहते थे और पीटीआई के खिलाफ आप जितनी भी टैक्टिक्स यूज कर लें हमारी पार्टी को आप खत्म नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा जी मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ मेरे कॉलीग्स के साथ तो इससे भी बुरा ना किया गया है। उन्होंने कहा जी 3 दिन पहले भी मुझे इन्हीं लोगों ने थ्रेटन किया था और मुझे चेस किया था और इस्लामाबाद पुलिस ने जो एफआईआर लिखी है मैं बिल्कुल उससे खुश नहीं हूं कि शायद उन्होंने काजी का ऑल्टर किया उसको। इस्लामाबाद पुलिस ने काजी के कौन से कंटेंट्स आपने ऑल्टर किए उसके बारे में आप बताएं क्योंकि हमने जो एफआईआर काटी आपकी रिटर्न रिक्वेस्ट के ऊपर काटी है जिसके ऊपर आपका साइन और थम इम्प्रेशन है तो आपकी लीगल टीम के सामने ये सारा कुछ हुआ है तो आप हमको कॉन्ट्रोडिक्शन देंगे तो फिर ही हम उसके ऊपर काम कर सकेंगे। तो ये आज बहुत सारी मिली जुली जो थी इनसे रिलेटेड खबरें थी। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो हैं इसहाक डार साहब उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ने डिसाइड किया है कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सेटअप की जाएगी ताकि वो तमाम बच्चे जिनके के साथ मॉब अटैक जिनके के ऊपर किया गया था किर्गिस्तान में उसके बारे में पता चलाया जा सके। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे यहां पे इस्लामाबाद में और इनके साथ एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन मोहम्मद सलीम नहीं उन्होंने कहा कि मोहम्मद सलीम साहब जो एडिशनल सेक्रेटरी वो हेड करेंगे इस कमेटी को। इनके साथ आज प्रेसर में बैठे हुए थे फॉरेन सेक्रेटरी साइरस साजिद काजी और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान का जो मिशन है किर्गिस्तान में उससे भी हम पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को आप बिश्केक में जो है वो फैसिलिटेट करें और हम जो किर्गिस्तान के जो अथॉरिटीज हैं उनके साथ भी हम बात कर रहे हैं। ये जो सारे मॉब जो वायलेंस हुई थी इसके अंदर 5 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो थे वो जख्मी हुए थे हालांकि ये हरासमेंट का एक इंसिडेंट शुरू हुआ था जिसमें कि इजिप्शियन स्टूडेंट्स की बेसिकली लड़ाई हुई थी लोकल्स के साथ। डार साहब जो है अब बिश्केक में पहुंचे हुए हैं और वहां पर उनकी मुलाकात जो है किर्गिस्तान के काउंटर पार्ट कुलूबेव जीनबेक मोलोदो केविच के साथ हुई है और इस वक्त उन्होंने कहा जी कि 3,000 के करीब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहां से वापस आ चुके हैं और बाकियों को भी हम फैसिलिटेट करेंगे अगर उनकी जान को खतरा है। आज जनाब पूरे एक साल के बाद पीटीआई के जो लीडर हैं हमाद अजहर साहब वो फिर से आज रीसर्फेस किए और फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में और उन्होंने कहा जी कि ये जो है पीटीआई की गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो ये क्रैकडाउन हो रहा था नवम्बर 9 के राइट्स के सिलसिले में उसके बाद ये चले गए थे लेकिन जब इनसे पूछा गया कि अब आप कैसे वापस आए तो उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब ने मुझे एक मैसेज भेजा था लास्ट नाइट कि रऊफ हसन साहब के ऊपर अटैक किया गया है और तमाम की तमाम पार्टी जो है उसको दे नीड टू ज्वाइन हैंड्स इनकी جو ہے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو اس لیے میں جو ہے یہاں پہ آیا ہوں. میں حسن صاحب سے ملوں گا, اس کے بعد میں پشاور جاؤں گا اور انٹرم بیل لوں گا. اس کے بعد میں جو ہے پنجاب کی کورٹس کے میں بھی جو ہے وہ حاضر ہوں گا اور اپنی بیلز لینے کی کوشش کروں گا, کیونکہ پنجاب میں میرے اوپر 51 سے 52 فیک کیسز ڈالے گئے ہیں. میں بالکل گلٹی نہیں ہوں ان کے اندر, اور باقی معاملات جو ہے میں خدا پہ چھوڑوں گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پی ٹی آئی کی دوسری لیڈر یاسمین راشد صاحبہ, ان کو ایڈمٹ کیا گیا ہے لاہور سروسز ہاسپٹل کے اندر, کیونکہ وہ فینٹ ہو گئی تھی کورٹ لکھپت جیل کے اندر. ان کے لائر جو ہیں رانا مدثر, انہوں نے کہا جی کہ ان کی حالت کافی کل سے خراب تھی اور ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دیا گیا. یہ کانسٹنٹلی وامٹنگ کر رہی تھی, ان کے پیٹ میں درد تھا, اس کے بعد جو پرزن سیل کے اندر گرمی تھی اس کی وجہ سے یہ فینٹ کر گئی, کیونکہ یہ ویسے بھی کنٹامینیٹڈ واٹر جو ہے وہ پی رہی تھی, لیکن کوئی ان کو چونکہ ایڈ نہیں دی گئی اور جب فینٹ ہوئی تو تب ان کو ہاسپٹل میں جو ہے اب لے کر گئے ہیں. تو جناب یہ تھی بات. آج ایک اچھی خبر یہ ہے کہ تقریباً 100 سٹولن آرٹیفیکٹس جن کی قیمت 13 million US dollars تھی, وہ آج جو ہے پاکستانی جو کاؤنسلیٹ کے ممبرز ہیں ان کو ایک سیرمنی میں مینہٹن کے ڈسٹرکٹ اٹارنی آفس نیو یارک کے اندر وہ ساری کی ساری واپس چیزیں کی ہیں. اور تقریباً یہ 133 پیسز تھے, اور اس سے پہلے بھی بہت سارے ٹرانسفرز جو ہیں پاکستان کو کیے جا سکے ہیں. یہ پوری جو چوریاں کر کر کے پاکستان سے لے جاتے ہیں. دس واز دا ففتھ ٹرانسفر جو کہ یو ایس نے کی ہے. یہ سارے کے سارے 8 پیسز جو ہیں یہ گندھارا پیریڈ سے ہیں. پاکستان کے جو کاؤنسل جنرل ہے نیو یارک میں عامر احمد اتوزئی, انہوں نے جو ہے پاکستان گورنمنٹ کے بہاف پہ یہ لیا اور انہوں نے شکریہ ادا کیا ڈسٹرکٹ اٹارنی آفس کا. اور ان کی جو اینٹیک ٹریفکنگ یونٹ ہے اور ہوم لینڈ سیکیورٹی جو ہے اس کے لیے, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ تمام کے تمام پیسز جو ہیں اب پاکستان کے میوزیمز میں جائیں گے. اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی میتھیو باگڈینوس جو تھے وہ بھی اس موقع پہ موجود تھے. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کی ایک گلوریس ہسٹری اور ہیریٹیج ہے اور اسی کے یہ گلوریس پیسز ہیں جو کہ ہم ان کو واپس کر رہے ہیں. یہ تمام کے تمام پیسز جو ہیں یہ بلانگ کرتے ہیں 5000 years سے جو کہ رائٹ فلی پاکستان کے پاس ہی ہونے چاہیے. تو جناب یہ سارے پیسز جو ہیں واپس آئیں گے. منڈی کا جو علاقہ ہے جی انڈیا میں, اس میں کافی لڑائی جھگڑا زیادہ ہی کچھ بڑھ گیا ہے, اور آج تو بہت ہی زیادہ ایک دوسرے کے اوپر حملے کیے گئے. یہاں پہ جو ہیں کنگنا رناوت صاحبہ جو ہیں ایک طرف ہیں, اور دوسری طرف کانگریس کے جو اربن ڈیولپمنٹ منسٹر ہیں وکرامادتیا سنگھ جو ہیں وہ ہیں. یہاں پہ یہ کافی ان کی اگلی ہو گئی ہے فائٹ جو ہے, کیونکہ دونوں ہی ہائی پروفائل ہیں کینڈیڈیٹس ہیں. سنگھ صاحب نے کہا جی کہ کنگنا رناوت جس بھی ٹیمپل میں گئی ہے اس ٹیمپل کو کلین کرنا پڑے گا. جب اس سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے سنا ہے یہ جو میڈیا کے اندر آیا ہے کہ یہ بیف کھاتی ہیں, اور اگر یہ بیف کھاتی ہیں تو یہ سارے لوگ جو بات کر رہے ہیں اور دیو سماج جو بات کر رہا ہے کہ اگر یہ کھاتی تھیں اور ان کی یہ ہیبٹس تھی تو پھر تو ان کو مندر کے اندر نہیں جانا چاہیے تھا, اور یہ جو ہمارا سناتن سنسکرتی ہے یعنی یہ جو ہمارا کلچر ہے اس کو انہوں نے خراب کرنے کی کوشش کی ہے. تو جس بھی یہ مندر میں اس طرح گئی ہیں اس کو صاف کرنا پڑے گا. کنگنا رناوت صاحبہ نے ظاہر ہے کہ ان کلیمز کو غلط کہا. انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے کبھی بھی بیف نہیں کھایا ہے, اور جو ہے وہ انہوں نے بلکہ ان کو کہا, انہوں نے کہا کہ جی کانگریس کا یہ جو خونی پنجہ ہے اس کو ہم کو ختم کرنا پڑے گا اور اس کو جو ہے جلانا پڑے گا تاکہ اسٹیٹ جو ہے یہ منڈی کی اس کو کلین کیا جا سکے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ یہ جو کانگریس پارٹی ہے چوروں کی پارٹی ہے, اور جو سنگھ صاحب ہیں وہ مہا چور ہیں. تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ یہ آپ اس طرح کے کرپٹ لوگوں کو کیسے ووٹ دیں گے. اس پہ ظاہر ہے کہ سنگھ صاحب بھڑک گئے. میڈیا کے ساتھ ہماچل میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ اس طرح کی لینگویج ہماچل پردیش میں بالکل بھی برداشت نہیں کی جاتی ہے, اور ہم ایک جو ہے وہ ایک مقابلہ کر رہے ہیں, اس کے اندر آپ اپنے ویژن کی بات کریں, آپ اس طرح کی گندی جو ہے لینگویج یوز نہیں کر سکتے اور اس طرح کے گندے کامنٹس نہیں دے سکتے. بہرحال جی وہ ہے, الیکشن کا وقت ہے تو لڑائی کافی تیز ہے. اب لڑائی جو ہے راہل گاندھی جی اور مودی جی کے بیچ میں بھی ہے. راہل گاندھی جی نے آج کافی اٹیکس کیے مودی جی کے اوپر, کیونکہ ایک واقعہ ہوا ہے جس میں کہ ایک پورش گاڑی جو ہے وہ ایک مائنر بچہ چلا رہا تھا, اور اس میں اس نے دو ینگسٹرز جو تھے ان کو اپنی گاڑی کے نیچے دے دیا ایٹ کلیانی نگر کے اندر, لیکن پھر بھی اس کو جو ہے جوونائل جسٹس بورڈ نے اس کو بیل دے دی ہے. تو یہ ویڈیو جب سامنے آیا تو اس پہ راہل گاندھی نے کہا جی کہ اگر کوئی بس ڈرائیور ٹرک ڈرائیور اولا والا اوبر والا آٹو ڈرائیور اگر کوئی اس طرح کی مسٹیک کرتا تو اس کو 10 سال کا جیل ملتا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو رچ کڈز ہیں, یہ جو پورش چلاتے ہیں انڈر دا انفلوئنس آف الکوہل, اور جس نے دو لوگوں کو مارا ہے اس کو صرف اتنا ہی کہا گیا کہ تم ایک ایسے لکھو. کیا یہ لوگ اگر ایسا کرائم کرتے تو ان کو بھی کہا جاتا کہ ایک ایسے لکھو؟ اس ملک میں امیروں کے لیے اور جسٹس سسٹم ہے اور غریبوں کے لیے اور جسٹس سسٹم ہے. مودی جی نے دو انڈیاز کریٹ کیے ہیں, ایک جو بلینئرز کے لیے ہے اور ایک جو ہے وہ پور کے لیے ہے. اب اس پہ ظاہر ہے مودی جی نے بھی چپ نہیں بیٹھنا تھا. مودی جی نے کہا جی کہ اپنی ایک ریلی کے اندر جو دلی کے دوارکا ایریا میں وہ کر رہے تھے کہ جو ہیں یہ کانگریس کا شہزادہ کبھی جھوٹ بولتے بولتے اس کے منہ سے سچ بھی نکل آتا ہے, جیسے کہ اس کے منہ سے یہ سچ نکلا ہے کہ جو سسٹم میری گرینڈ مدر یعنی کہ اندرا گاندھی اور میرے والد صاحب راجیو گاندھی اور جو میری ماں سونیا گاندھی نے لایا تھا وہ دلیتس بیکورڈ کلاسز اور آدی واسی کے اگینسٹ تھا, اور اس نے جنریشنز جو ہیں وہ ڈسٹروائے کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مودی جی نے کہا کہ ٹی ایم سی والے جو ہیں مسلمانوں کو کچھ زیادہ ہی بڑھاوا دے رہے ہیں. 2011 سے یہ جو رول کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کا ووٹ بینک جو ہے لے کے کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ان کو جو ہے بیکورڈ جو کلاس کے سرٹیفکیٹس ہیں وہ دے رہے ہیں تاکہ ان کی ایک اپیزمنٹ کی پالیٹکس جو ہے چلائی جا سکے. بٹ دیر از اے لمٹ, ٹی ایم سی نے وہ لمٹ جو ہے ختم کر دی ہے. یہ جو خان مارکیٹ میں لوگ بیٹھے ہیں یہ گینگسٹرز ہیں اور یہ ریسپانسبل ہیں ہندوستان کے اندر یا بنگال کے اندر ایٹ لیسٹ سندھ کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی ایم سی کہتی ہے کہ اس ملک کے ریسورسز کے اوپر مسلمانوں کا زیادہ حق ہے, جو کہ بالکل نہیں ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو اپوزیشن ہے یہ ویسے بھی وقف بورڈ کو, جو مسلمانوں کا وقف بورڈ ہے اس کو لاکھوں روپے کی جو زمین ہے وہ دیتی پھرتی ہے وقف بورڈ کو تاکہ ان کو ووٹ مل سکے. تو یہ سب کچھ جو ہے بالکل غلط ہے اور ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. تے بھائی جان بس پھر ان لڑائی تے انہاں دی چلدی رہے گی کچھ عرصہ تک. ہے جی, آج جناب شاہ رخ خان صاحب کو ہاسپٹلائز کیا گیا ہے, احمد آباد میں وہ تھے اور ان کو ہیٹ سٹروک ہو گیا ہے. تو جو سامنے آئی ہیں ایکس کے اوپر جو ویڈیوز آئی ہیں اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ ان کی وائف گوری خان جو ہیں وہ بھاگتے ہوئے جا رہی ہیں ہاسپٹل کے اندر اپنے سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ. اس کے علاوہ ان کی جو بہت کلوز فرینڈ ہیں جوہی چاولہ اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں جے مہتا وہ بھی وہاں پہ ہاسپٹل میں پہنچے. ابھی تک جو ہے فیملی نے اس کے اوپر کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے, لیکن جو میڈیا کی خبریں آئی ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ شاہ رخ خان صاحب جو ہیں وہ اسٹیبل ہیں. منیشا کوئلارا صاحب جو کہ ابھی سنجے لیلا بھنسالی کی فلم ہیرا جو سیریز ہے ہیرا منڈی جو نیٹ فلکس پہ آئی ہے اس میں دیکھی گئی تھی, وہ رشی سونک صاحب جو یو کے پرائم منسٹر ہیں ان سے ملنے کے لیے انگلینڈ میں نظر آئیں 10 ڈاؤننگ سٹریٹ کے اوپر. انہوں نے بہت ساری تصویریں جو ہیں ایک سیلیبریشن جو ہو رہی تھی اس کی اپنے جو ہے انسٹا کے اوپر ڈالی. یہ جو سیلیبریشن تھی یہ تھی 100 ایئرز آف فرینڈشپ ٹریٹی بٹوین یو کے اینڈ نیپال, تو یہ نیپال جو ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہی تھی. انہوں نے کہا جی یہ بہت بڑا آنر ہے کہ مجھے یہاں پہ بلایا گیا ہے, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر رشی سونک صاحب جو ہیں انہوں نے اتنے پیار سے نیپال کے بارے میں بات کی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں آئی ٹک دا لبرٹی آف انوائٹنگ دا پرائم منسٹر اینڈ ہز فیملی ٹو ٹریک ٹو ایوریسٹ بیس کیمپ, کہ وہ جو ماؤنٹ ایوریسٹ کا بیس کیمپ ہے اس کی ٹریکنگ کے لیے یہ وہاں پہ آئے. اور انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ جو سیرمنی میں بہت سارے لوگ آئے تھے مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ انہوں نے ہیرا منڈی دیکھی ہوئی ہے اور مجھے بڑی اس پہ خوشی ہوئی. سلمان خان اور ایشوریا رائے, آپ کو پتا ہی ہے کہ سنجے لیلا بھنسالی کی ہی لاسٹ فلم جو 1999 میں آئی تھی رومانٹک میوزیکل تھا ہم دل دے چکے ظلم, اس میں نظر آئے تھے اور ایشوریا رائے کے لیے بڑے یہ سیریس تھے. سلیم خان صاحب کا اس سلسلے میں ایک پرانا انٹرویو جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور اس میں آپ کو پتا ہی ہے کہ پھر ان کا سپلٹ ہو گیا تھا ایشوریا کا اور سلمان کا, اور پھر ایشوریا رومانٹکلی انوالو ہو گئی تھی وویک اوبروئے کے ساتھ, اور دونوں نے پھر جو سلمان نے اور ایشوریا نے دے پارٹڈ ویز ان 2002. اور پھر جو ہے ایک پریس کانفرنس میں وویک اوبروئے صاحب بھی سامنے آئے تھے جب ان کے ساتھ لڑائی ہو کے ایشوریا ان کے پاس آئی تھی کہ جی سلمان خان نے مجھے تھریٹ کیا ہے. پھر ایشوریا صاحبہ نے شادی کر لی تھی ابھیشیک بچن کے ساتھ 2007 میں, اور اس وقت ان کی ایک بیٹی ہیں آرادھیا جو ہوئی تھی نومبر 2011 میں. سلیم خان صاحب نے اس میں کہا جی کہ کوئی لاجک نہیں تھا کہ یہ دونوں آپس میں لڑ پڑے تھے ایک ٹریویل میٹر کے اوپر, لیکن دونوں ہی بڑے ایموشنل ہیں. میں نے تو ان کو کہا تھا کہ یہ کچھ عرصے کے بعد یہ دونوں بیٹھیں گے اور سوچیں گے کہ کتنی ٹریویل بات کے اوپر کتنی اسٹوپڈ بات کے اوپر انہوں نے فائٹ جو ہے وہ کی تھی. البتہ اسی انٹرویو میں سلیم خان صاحب سنائی دے رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی 2009 کے بعد سلمان ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ سمجھ جائے گا اور شاید شادی بھی کر لے, لیکن اگر نہ کیے اس نے ایک دو سال میں شادی تو پھر وہ شاید کبھی بھی نہیں کرے گا. اسی طرح جو وویک اوبرائے بھی ہیں انہوں نے بھی جو ہے سامنے آ کے کہا, انہوں نے کہا کہ ان نیسیسری سٹف کے اوپر ہم نے دونوں نے اتنا ہنگامہ کریٹ کیا تھا اور ڈیفینیٹلی بالی ووڈ کے اندر لابیز بھی ہیں اور بڑی ریپریسو قسم کی جو ہیں سٹوریز بھی ہیں, یہ ڈارک سائیڈ ہے بالی ووڈ کی اور میں جو ہے ریسیونگ اینڈ پہ رہا ہوں. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ جو ہے جناب انٹرویو سامنے آئے. اور جناب یو ایس اے نے آج کریٹ کی ہسٹری, یو ایس کرکٹ جو دنیا میں کہیں پہ بھی کبھی بھی نظر نہیں آتی, اس نے آج ایک ورلڈ کلاس ٹیسٹ ٹیم بنگلہ دیش کو ہرایا. کین یو امیجن ان دیئر فرسٹ ٹی ٹوینٹی جو یہ تھری میچ سیریز ہو رہی ہے ایٹ پریری ویو ہوسٹن کے اندر, اس کے اندر بنگلہ دیش جو تھی اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. یہ جو بڑی زبردست سٹیون ٹیلر نے جو بیٹنگ جو بولنگ کر رہا تھا وہ اس سلسلے میں بنگلہ دیش کے لٹن داس نے 14-15 بالوں پہ بنائے, کیپٹن نجم الحسن شانتو نے 3 صرف بنائے 11 بالز پہ, سومیا سرکار نے 20 بنائے 13 بالز پہ, شکیب الحسن 6 کے اوپر آؤٹ ہو گئے. بنگلہ دیش وہ 68 for 4, محمود اللہ ریاض اور توحید ردوئے نے 67 رن کا سٹینڈ دیا آن 47 بالز, لیکن یہ کافی نہیں تھا, ردوئے نے پھر 50 رنز بھی بنائے. بنگلہ دیش واز آل آؤٹ 153 جو کہ لگ رہا تھا کہ مناسب ہی سکور ہے, لیکن یو ایس اے نے ان کو ہرایا. یو ایس اے کے آندریس گوس جو ہے انہوں نے 38 بنائے فار 18 بالز اور گیم چینجر بیسیکلی رہا ہرمیت سنگھ اور کوری اینڈرسن کا جو فائنل اوورز کے اندر 56 رنز جو انہوں نے بنائے 4 اوورز کے اندر, اور اینڈرسن نے بنائے 34 of 25 بال, سنگھ نے بنائے 33 of 13, اور جو یہ یو ایس اے ہے بنگلہ دیش سے جیتا ہے 5 وکٹ سے. کیا بات ہے,
بگ مو.
کرکٹ آسٹریلیا جو ہے جی اس نے اپنی لانچ کی ہے ملٹی کلچرل امبیسڈر پروگرام, اس کے اندر انہوں نے 54 پلیئرز جن کے یا پرسنالٹیز جن کا ڈفرنٹ سیکٹر سے تعلق ہے, بزنس سے, اسپورٹس سے, میڈیا کمیونٹی سے, ان کو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارے امبیسڈرز رہیں گے. انوگرل پلیئرز جو ہیں اس کے اندر عثمان خواجہ, میل جونز, وسیم اکرم, لیزا سٹیلتکر, روی شاستری, کشور چودھری, الانا کنگ, پیٹر ورگس, سواتی دیو اور فواد خان احمد جو ہیں وہ اس کے اندر ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم ایک ڈائیورسٹی جو ہے اس کو ہم فروغ دینا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام لوگ جو ہیں انکلوزیوٹی اور پازیٹو چینج جو ہے آسٹریلیا میں لے کے آئیں. پاکستان ٹیم مینجمنٹ جو ہے اس نے جناب رائٹ آرم فاسٹ بولر حسن علی کو اب سائڈ لائن کیا ہے فار ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2024, کیونکہ حارث روف پوری طرح سے فٹ ہو گئے ہیں. ویسے بھی حسن علی نے کہا تھا کہ وہ جو ہے کاؤنٹی کرکٹ ورڈوک شائر میں کھیلنا چاہتے ہیں تو ان کو اجازت دے دی گئی ہے, اور روف جو تھے وہ چونکہ زخمی تھے تو اس لیے ان کو ہٹایا گیا تھا. حسن علی جو ہے ان کی کچھ فگرز اتنی اچھی نہیں رہی, انہوں نے 0 وکٹس لیے ہیں فار 42 رنز ان ٹی ٹوینٹی اگینسٹ آئرلینڈ آن May 14. اس کے علاوہ وہ صرف 60 وکٹس انہوں نے لیے ہیں 50 ٹی ٹوینٹیز میں ایٹ این اکانومی ریٹ آف 8.45, جو کہ اتنی اچھی فگرز نہیں ہے. اور پاکستان کا اسکواڈ کہا جا رہا ہے کہ ریڈیوس کیا جائے گا 17 ممبرز کا فار ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ان یو ایس اے اینڈ ویسٹ انڈیز اسٹارٹنگ فرام June 1, اور 18 ممبر اسکواڈ جو ہے انہوں نے اناؤنس کیا تھا ارلیئر فار انگلینڈ اینڈ آئرلینڈ کی جو ٹی ٹوینٹی اب سیریز ہونے والی ہیں, اور ابھی کچھ دنوں میں پھر پاکستان جو ہے اپنا ورلڈ کپ اسکواڈ جو ہے وہ بھی اناؤنس کرے گا. آج پاکستان اور انگلینڈ کے بیچ میں فرسٹ ٹی ٹوینٹی تھا جو کہ نہیں ہو سکا کیونکہ بہت ہیوی رین ہو گئی, ایک بال بھی بول نہیں کیا جا سکا. یہ میچ 6:30 پی ایم لوکل ٹائم پہ شروع ہونا تھا لیکن بالکل نہیں ہو سکا, اس لیے 0 ابھی اس وقت 0-0 کے اوپر سٹینڈ کرتی ہے. اب ساروں کی آنکھیں جو ہیں ایک بیسٹن کے اوپر ہے, جا کے سیکنڈ ٹی ٹوینٹی کھیلا جائے گا تو دیکھیں گے کون جیتے گا. اینڈ ایبسولیوٹلی اور لاسٹ نیوز از اباؤٹ فیفا. فیفا کو پھر سے یاد آ گئے ہیں ہیومن رائٹس, کیونکہ ظاہر ہے کہ سعودی عربیہ نے کہا تھا کہ 2034 کا ورلڈ کپ جو ہے ہم اپنے ملک میں کرانا چاہتے ہیں, تو فیفا کو اب یاد آ گئے ہیں پھر سے ہیومن رائٹس, اور انہوں نے کہا جی انٹرنیشنل لائرز کو کہ اسکروٹنائز کریں اس کا سعودی کا جو ہیومن رائٹس ریکارڈ ہے. آج انہوں نے ایک 22 پیج کا ڈاکیومنٹ جو ہے وہ فیفا کے ہیڈ کوارٹرز میں زیورک میں ان کو دیا ہے آن بہاف آف مارک پیت, اسٹیفن ویرن برگ آف سوئٹزرلینڈ اور یو کے کے جو اٹارنی ہیں روڈنی ڈکسن, اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کا اپنا خود کا ایک ایکشن پلان ہوتا ہے اور آپ کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ٹورنامنٹ کو ہوسٹ کرنے کی, اس کو آپ دیکھیں اور آپ اپنا جو انفلوئنس ہے وہ یوز کریں سعودی عربیہ کے اوپر تاکہ وہ اپنے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اسٹینڈرڈس کو فالو کرے اس سے پہلے کہ آپ اجازت دیں. یعنی کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ان کو قطر میں نظر آتی ہیں, سعودی میں نظر آتی ہیں, اسرائیل میں ان کو کوئی نہیں نظر آ رہی ہیومن رائٹس وائلیشن ہے, کتنا شور مچایا, وہ فیفا قطر میں نہیں ہونا چاہیے, بڑے بیڈ ان کے ہیومن رائٹس. اس کے بعد فیفا نے کیا کہا, دنیا کا آج تک سب سے اچھا فیفا ورلڈ کپ قطر میں ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, کیا فیسلٹیز تھیں, کیا زبردست تھے. بھائی بھائی ابھی بھی میں وہاں سے ہو کے آئی ہوں سعودی سے, آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا انفراسٹرکچر ہے ان لوگوں کا, اور جو ہے وہ میچ نہیں کر سکتے یہ لوگ جو ہیں. یعنی آپ سوچیں ماجد بھائی, کتنے دنیا کے بڑے بڑے یہ جو ٹورنامنٹس ہوتے ہیں کانسٹنٹلی یہ عرب کنٹریز میں ہو رہے ہیں. ابھی جب ہم سعودی میں تھے, وی ہیڈ ٹو یو نو ٹریول آؤٹ آف سعودی, کانسٹنٹلی وہ لوگ میسجز بھیج رہے تھے کہ وہ جو اس کا فیوری کا جو میچ ہے اور اس کا یوسک کا جو میچ ہو رہا تھا, وہ آپ سوچیں ذرا کہ وہ کتنے ہائی لیول کا ہے. پھر ابھی ایم ایم اے وہاں پہ فائٹس ہو رہی ہیں, پھر ابھی جو ہے
نیکسٹ فیفا کا جو وہ ہوگا نا ادھر, تو سعودی جو ہے وہ قطر سے بیٹر کرنا چاہیں گے.
ظاہر ہے ماجد بھائی, ظاہر ہے.
امیجن دیٹ.
ہاں ہاں, کیونکہ سعودی ملک بھی بڑا ہے نا, سعودی بہت بڑا ملک ہے. کیونکہ قطر کے اندر تو یہ ہو رہا تھا مجھے, ان کو ایک پوری روڈ بنانی پڑی تھی کہ لوگ دبئی چلے جائیں, یو اے ای چلے جائیں اور سعودی چلے جائیں, اپنا جو انٹرسٹ کا میچ ہے وہ دیکھنے قطر میں آ جائیں. سعودی میں تو ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے, سعودی تو اٹس سچ اے ہیوج کنٹری اور اتنے وہاں پہ جگہ ہے کہ ایوری بڈی کین بی یو نو ٹیکن کیئر آف ان سعودی. آپ سوچیں کہ ابھی ہم جو ہے ترکیے بھی گئے ہوئے تھے, لیکن جو فیسلٹیز مکہ اور مدینہ کے ہوٹلس کی ہیں unmatched absolutely unmatched ہے. تو یہ سارے کنٹریز جو ہیں, بحرین, قطر, عمان, یو اے ای, سعودی آف کورس, ان کی تو آؤٹ اسٹینڈنگ فیسلٹیز ہیں.
نو میچ. یہ آج کی ہماری خبریں, اور بہت بہت شکریہ آپ کا.
تھینک یو
سو مچ شہزاد جی. اینڈ بقیہ کی باتیں ان شاء اللہ تعالی کل ہوں گی, مگر اب سے ابھی کچھ اسپانسر کے پیغامات ہوں گے, اس کے فوری بعد ذیشان ایک رنگا رنگ پروگرام لے کے آپ کے سامنے آئیں گے.